ओम शांति। मुझे प्रवेश करते ही बहुत अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हुए। आप सब बाबा की चैतन्य मूर्तियों को देखकर ऐसा लगा ये सारे यज्ञवत्स यज्ञ रक्षक यज्ञ संभालने वाले यज्ञ को सफल करने वाले तपस्वी मूरत ऋषि कुमार ऋषि कुमारियां बैठी हैं। ऋषि माना ही तपस्वी। ज्ञानी भी और तपस्वी भी। बाबा ने ये कार्य हम ब्राह्मण बच्चों को सौंपा है कि जिस यज्ञ की स्थापना मैंने की है उस यज्ञ को आपने संभाल कर नए विश्व की रचना और पुरानी दुनिया के परिवर्तन का कार्य संपन्न करना है। हमारी दादियों ने बड़ों ने इस यज्ञ को बहुत तूफानों से बचाकर इस स्तर पर लाया है। मुझे एक गीत की लाइन याद आती है और वो बारंबार कानों में गूंजती भी है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस यज्ञ को रखना प्यारे बच्चों संभाल के। दादियों ने इस यज्ञ रूपी किश्ती को कितने तूफानों से बचा करके लाया है। अब इसको बचा के रखना हम सबका कार्य है और उसके लिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं दी है। सच पूछो तो टॉपिक में सूक्ष्म मर्यादाएं। सच्चाई की बात यह है मर्यादाएं मर्यादाएं होती है न स्थूल न सूक्ष्म। जो मर्यादाएं वो मर्यादाएं और वो मर्यादा का पालन करने में ही अपनी शक्ति है। मर्यादाओं का पालन ब्राह्मण जन्म का धर्म है। जैसे सांसारिक ब्राह्मण कुछ नियमों का कुछ बातों का पालन करते हैं और यदि वह उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण थोड़ी है, सारे नियमों से कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है, जो इसको नहीं खाना चाहिए वो खाता पीता है, ब्राह्मण कहेगा, बोलते हैं ना। जब उसने अपने नियम धर्म मर्यादा को तोड़ दिया, ब्राह्मण नहीं कहना, नाम कर। और बाबा भी कहते मेरे बच्चों में भी ऐसे हैं, नामधारी भी हैं और धर्मधारी कर्मधारी भी हैं। हम बच्चे जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं, हम तो धर्म कर्मधारी हैं, हम मर्यादा का पालन करते हैं तो सारा जगत करता है, क्योंकि ऐसे बीज रूप स्थल पर हैं जहां पर सारी दुनिया, सारा ब्राह्मण परिवार हमको देख रहा है। तो नियमों का, मर्यादाओं का पालन बीज तक, और बीज है संकल्प और स्वप्न, वहां तक हमारी मर्यादाओं का पालन। बाप दादा के अव्यक्त रूप के कुछ महावाक्य जो बाबा चार्ट की चेकिंग में सुना रहे थे, उसमें बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, यदि संकल्प और स्वप्न में भी उल्लंघन होता है तो उसकी भी सजा है। यहां तक बाबा ने कहा, यदि पुरुषार्थी जीवन में अलबेलापन है, अलबेलेपन की भी सजा है। जब मैंने वो सुना तो कान खड़े हो गए, कि अलबेलापन जिसको हम इतनी बड़ी चीज समझते ही नहीं है, तो ये बड़ा अलबेला है, बड़ी अलबेली है, उसको कोई खास बात नहीं समझते, पांच विकारों को खास बात समझते हैं, लेकिन इसको तो हम लोग समझते ही नहीं इतना। लेकिन जब बाबा ने कहा अलबेलेपन की भी सजा है, तो लगा कि बाबा ने ये रूहानी सेना तैयार की है, और रूहानी सेना को ये कार्य दिया है कि तुमने रावण राज्य से भारत को छुड़ाना है, और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कई बातें बताई हुई। अगर हम इसका बीज देखें, जो भी बातें छोटी मोटी स्थूल रूप से भी हमारी उल्लंघन होती हैं, उसका बीज क्या है, चाहे आप स्वयं को देखिए, चाहे आप औरों को देखिए, जिसने भी ऐसा उल्लंघन किया उस चीज का बीज कहां है। तो मैं आपका ध्यान बाबा के साकार रूप के अंतिम महावाक्यों की ओर ले जाना चाहती हूं, जिसमें बाबा ने निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनने को कहा है। जब तक साकार रूप में रहते हुए हम निराकारी नहीं हैं, निराकारी अर्थात देही अभिमानी। जब तक ये नहीं है तब तक हम निर्विकारी बन नहीं सकते। यह बीज देही अभिमानी होंगे तो ही निर्विकारी होंगे, अन्यथा देह अभिमान में होंगे तो देह अभिमान तो पाप की मूल, पाप का मूल है ना। हमारा ध्यान सूक्ष्म स्तर पर इस मूल मर्यादा आत्मिक भाव देही अभिमानी उस पर होना अनिवार्य है। यदि हम अपने इतिहास को देखें तो प्यारे बाबा ने आदि से, चाहे अपने लिए चाहे बच्चों के लिए, ये अभ्यास पक्का कराया था। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा डायरी पेन लेकर के लिखा करते थे, जसोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। जब तक हमारी मूल फाउंडेशन जो बाबा ने अंतिम शब्दों में कही हुई है निराकार, जब तक ये मूल फाउंडेशन हमारी पक्की नहीं है तब तक कुछ न कुछ, कुछ न कुछ उल्लंघन होता ही रहेगा। आत्मिक स्थिति में नहीं है तो कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। राजा अपनी सीट पर नहीं है तो कर्मचारी मनमानी करेंगे। तब बाबा ने हम बच्चों को रोज रात को दरबार लगाने के लिए क्यों कहा? रोज रात को दरबार लगाओ, ये अभ्यास मैं राजा हूं वो हमारा कूट कूट करके पक्का होना चाहिए। कूट कूट करके पक्का हो, ये बीज है। इस बीज से निर्विकारिता आएगी। और तीसरा है जिसको बाबा ने कहा निरअहंकारी। देहाभिमान किस रूप से झलकता है? अहम, संस्कृत में अहम का अर्थ है मैं, मैंपन। स्वप्न और संकल्प में भी हम चेक करें ये मैंपन मिटा नहीं है। वो स्थिति तू तू न रहे, मैं न रहूं, यदा कदा तो क्या, मैं अपने लिए सख्त शब्द लेती हूं, सदा मैंपन की स्मृति बनी हुई है। व्यवहार में मैंपन कहां छूटा है? चेक कर ले, मैंपन बहुत कॉन्शियस है। अहम सदा बना हुआ है, छूटा नहीं। इसलिए मैंपन की अगर आपको बाबा की मुरली वो याद हो तो बाबा ने कहा था ये मैंपन तुमसे चार उल्लंघन कराता है। कौन से? मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद। इसकी डिटेल ये जितनी बातें हैं छोटी छोटी, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, घृणा, ये सब इन चार में समा जाते हैं। मैंपन बाबा से मिलने नहीं देता, ऊपर से होंगे आंतरिक संतोष और खुशी। मर्यादा का पालन, संतुष्टता, संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव कराता है। संतुष्ट हर हाल में, अगर ये तीन चीजों की अनुभूति नहीं होती है, ठीक है, मैं मानती हूं कि आज की डेट में हम संपूर्ण नहीं है, हम संपूर्ण बनने का अभ्यास कर रहे हैं। अटेंशन तो है, महसूस तो करते हैं हम उस पथ पर है, परंतु अगर वो महसूसता नहीं, वो भूला हुआ है, एक कालदर्शी है केवल वर्तमान, तो मर्यादा का पालन मैं क्यों करूं? वो खुशी, वो संपन्नता, संतुष्टता, ये लिटमस टेस्ट है कि मेरा जीवन मर्यादा के अनुसार चल रहा है। आप निश्चित जानिए, इन तीनों की अगर कमी महसूस होती है तो अपने को गहराई से टटोलने की जरूरत है। प्यारे बाबा ने जब कहा मायूसी क्यों होती है, मायूसी मन मेरा जो भाग्य से भगवान का बना और कुछ भी तो नहीं है हमारे हमको करने को, कुछ भी तो नहीं है, मन सदा हर्षित क्यों नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या क्यों नहीं, प्रश्न चित्त क्यों, क्वेश्चन है, वो मन जो बाबा ने दिया मन मना भव होने के लिए, वो मन क्या कर रहा है? आप संतुष्ट हैं उसकी परफॉर्मेंस से? कहाँ है? अभी तक भी मन अपनी मनमानी करता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसे कार्य मिला है मनमना भव होने का, और यहां प्रॉब्लम है मन मना भव होता ही नहीं, बार बार उठा के लाना पड़ता है, बार बार अटेंशन रखना पड़ता है। अब तक भी अगर मैं अपने मन को साध नहीं पाई हूं, और ये फैक्ट है, केवल आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हम सबको इस बात पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। मन की साधना बोलते तो हमें मन की साधना क्या है? मन आज्ञाकारी है, जहां इसको बिठाओ, जब बिठाओ, जैसे बिठाओ, जितनी देर के लिए बिठाओ, आपका कहना मान रहा है? पूछ लो अपने आप। नहीं मान रहा, नहीं मानता। ये अभ्यास है। सूक्ष्म स्थूल रूप से बुरा नहीं मानना, कॉमेंट्री भी चल जाएगी, गीत भी चल जाएंगे, मनन चिंतन भी हो जाएगा, मनन चिंतन करते हुए भी मन और जगह भी घूम रहा है, गीत सुनते हुए भी घूम रहा है। वो एकाग्रता मन की मर्यादा है। इसको और आप गहरेरी से सोचिएगा। ऐसे तो मन मायूस होगा ना, मायूसी आएगी ना, स्वाभाविक रूप से मगरूरी, मगरूरी बारे में मेरे जैसा दुनिया में और कोई योगी है ही नहीं, मैं महायोगी आत्मा, संकल्प सिद्धि वाली आत्मा, कच्चा फल खाने वाली आत्मा। कच्चा फल महिमा स्वीकार करने वाली आत्मा, तो मगरूरी तो आएगी ना। जो महिमा बाबा को ट्रांसफर करनी चाहिए वो खुद स्वीकार करूंगी, तो मगरूरी नहीं आएगी तो क्या आएगा? आप गुलजार दादी की महिमा करो, पहला सेंटेंस उनका क्या होता है? ये सारी महिमा शिव बाबा की है। आजकल जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एक घंटे का क्लास, 15 मिनट बहन तो आपकी महिमा के पुल बांधेगी, आपको मिले 45 मिनट, थैंक्स में भी 10 मिनट लगाएगी। जो आत्माएं उसे ट्रांसफर कर देती हैं वो तो ठीक, तो मगरूरी तो आ ही सकती है। चूहे लद्दी हेडगरी समझ बैठा मैं पंसारी हूं, ये मगरूरी पुरुषार्थहीन कर देती है। कच्चा फल खाने के लिए प्रेरित करती है, अपनों से दूर कर देती है, बाबा से बेमुख कर देती है। अन्य आत्माओं को भी बाबा से बेमुख करती है। ये हमारी मन की स्थिति, मुरझाइश। तीसरी बात, अगर किसी ने मेरे से अच्छा भाषण कर लिया दूसरों को देखने से मुरझाइश आती है। अपने भाग्य को न देख करके जब हम औरों को देखते हैं तो मुरझाइश आती है। बाबा ने हमें सावधान किया हुआ है, दिल शिकस्त। दिल शिकस्त क्यों होते हैं? जब दूसरों को देखते हैं। इस जीवन काल में बहुत आत्माएं देखी, अंदर में है सूक्ष्म बीज ईर्ष्या का, और वो कंपैरिजन के रूप से दिखाई देता है। और जब कोई मेरे से बढ़िया कर लेता है तो मुझे दिल शिकस्त कर देता है। ये बात आज बाह्य जगत में भी है तो अपने घर में भी है। अच्छे अच्छे यूथ, इंटेलिजेंट, एक्सलेंट, लंबे चौड़े, ऐसे इतने बड़े को माँ बाप लेकर के आते हैं कि बहन जी ये दिल शिकस्त हो गया है, थोड़ा सा इसको समझाओ। क्या कारण हुआ? ये अपने ऑफिस में नंबर वन था, किसी दूसरे ने अब इससे बेहतर कुछ बना के दे दिया, अब इसके ऊपर। इसको बाबा कहता है मगरूरी, मगरूरी से मुरझाइश हो गई ना, अपने आप को सबसे टॉप पर समझा। तब बाबा ने हम बच्चों को बेहद बुद्धि दी है। बेहद बुद्धि में क्या है? सब अपने हैं। ये शरीर है, शरीर में आप गिट्टी डालते हैं, हर अंग अपना काम करता है और हर अंग का सहयोग चाहिए। एक भी अंग अगर स्ट्राइक पर चला जाए तो मुश्किल हो जाएगी। आज मैं तो नहीं हूं, बाबा की सारा परिवार, बाबा के बच्चे हैं। कोई कार्य यहां से है, कोई कार्य यहां से, कोई यहां से है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। हमारा टीम वर्क, टीम वर्क में हर एक को रिस्पेक्ट। दादी जानकी की एक बात याद आती है जो कल और परसों सुनाई है, आप लोगों ने हो सकता है सुने हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले भी मैंने सुनी थी लेकिन जैसे कोई बात सेट हो जाती है ना दिमाग में, तो अभी सेट हुई। एक दो बहनें थी, एक बहन कहती है दादी मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? ये मुझको रिस्पेक्ट नहीं देती है। ठीक बात है ना, ना वो देती है ना तुम देती हो, टिट फॉर टैट, वो भी नहीं देती तुम भी नहीं देती। दादी ने कहा तुमको रिस्पेक्ट देनी है। क्यों देनी है? वो मुझको नहीं देती। दादी ने कहा तुमको देनी है क्योंकि तुमको देवता बनना है। लॉजिक समझ में आया? तुमको देवता बनना है ना, तो तुमको देनी है। व्यवहारिक मर्यादा, देवी घराने की मर्यादा, ईश्वरी मर्यादा देने की है। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी है कि अच्छी बातें कई हम लोग यही बोलते हैं ना, हमारे मुख से क्या निकलता है, बहन जी पहले उसको तो समझा लीजिए, बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, बहुत भाषण करते हैं, पहले उनको तो सुधार लीजिए, वो सुधर जाएंगे तो हम अपने आप सुधर जाएंगे। बहन जी थोड़ा सा तो वो कर ले, वो इतना ही कर ले, मैं 10 कर लूंगा। हम जा रहे हैं सतयुग में, हमें ये सोचना है, हम जा रहे हैं सतयुग में। सतयुग में कौन से संस्कार हैं? तोल मोल के हैं, बोलो तोल मोल के संस्कार हैं सतयुग में। आप लोग मौन में सिर हिला दो, बाबा जैसे कहते हैं कान तो हिलाओ। तोल मोल के संस्कार सतयुग में है? वो हमारे द्वापर युग के संस्कार हैं। मैंने जाना है द्वापर में, इतना त्याग करके इतनी तपस्या करके द्वापर में जाना है? नहीं जाना है ना, द्वापर में नहीं जाना है, सतयुग में जाना है। तो कौन से संस्कार चाहिए? देवतापन के चाहिए ना। तो मैंने देवता, हर बात में ये सोचो मैंने देवता बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का नहीं है, देवताओं का है। मैंने बनना है, मैंने देवता बनना है, इसलिए मैंने ही अच्छे संस्कार धारण करने हैं, मैंने ही सर्व मर्यादाओं का पालन करना है। कोई करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने करना है। तो ये जो चौथी बात आती है मतभेद, वहां ये समाप्त हो जाती है। मैंने करना है तो मतभेद होगा ही नहीं ना। सब बातों को छोड़ दो, एक ही बात बुद्धि में अगर रख लो, मैंने देवता बनना। फिर बाबा ने, प्यारे भाई और बहनों, हम सबके लिए विधान बताया है, और वो विधान है एक वृत्ता। एक वृत्ता, अव्यभिचारी बुद्धि वो सेकंड, लेकिन एक व्रता है, मर्यादा है ना। एक से ही सब कुछ लेने पाने वाले हैं, एक कई साधे सब सधे सब साधे सब जाए। ये दुनिया का सुर है। बाबा ने एक मुरली में बताया हुआ है कि मेरे वो बच्चे जो एक व्रता है मुझसे ही लेते हैं, निराधारी है, कोई भी प्रकार का आधार नहीं रखते, वो मेरे बच्चे पास विद ऑनर सकते हैं। बाबा उनको ऑनर करता है। एक वृथा, ये हमारी मर्यादा है। ये कहीं लिखी हुई नहीं है, अगर मेरी बुद्धि इधर उधर जा रही है फिर चाहे कोई भी कारण। कभी कभी कहते हैं हम साकार ही है ना, साकार में कोई तो चाहिए ना जिससे दिल की लेन देन कर सकें, जिससे शेयरिंग कर सकें, किससे शेयर करें। मैंने अपना कचरा उठा के उसको दे दिया, वो मेरा गति सदगति दाता है। जिससे मैं शेयर कर रही हूं वो मेरा मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता है। ये अभ्यास, ये हमारी साधना है। बाबा के ऐसे बच्चे हैं, एक व्रता है। क्यों हम कहते हैं, क्यों गाते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, मत गाओ ना। आ तो फिर शुरू हो गया ना। ये मर्यादा है। इसी रीत से बाबा कहता है, बाबा ही मेरा संसार है, पक्का है। वो जो तुम्हारा वायदा है, तुम संग बोलूं, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग रास रचाऊं, पक्का है, वायदा है। जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, सब स्वीकार है, पक्का है। ये हमारी तपस्या है, यही हमारी तपस्या है। और हमने कल्प पहले किया हुआ है, उसका गायन है, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाया है, ये हमारा गायन है, यादगार है, हमने किया है। ये जो समय हमें मिला है, ये समय हमें मिला है अपनी इन चीजों को फाइनल करने के लिए। एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम होते हैं तो लास्ट डेज में क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उनके ऊपर अटेंशन देते हैं ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाबा ये देखता है। बाकी जिस लक्ष्य से हम आए बाबा के पास, जिस एम से हम आए बाबा के पास, वो एम मेरी पूरी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना? बाबा के पास आए, जिसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं, पूरी होनी चाहिए। मैंने बाप समान बनना है, अब हमारे पुरुषार्थ की लेवल चेंज हो जानी चाहिए। एक समय था जो हम ये सब चेक करते थे, अमृत वेला, किसको दुख तो नहीं दिया, पर चिंतन तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, ये नर्सरी की चेकिंग है। अब तो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अब हमारी जो चेकिंग है, मैं निराकारी स्वरूप में कितना समय रही, फरिश्ता स्थिति में कितना समय रही, कर्मातीत स्थिति का आवाहन कितना समय किया। अब इस लेवल पर आ जाओ, यही हमारी लेवल है। अब वो सब बातें अब खत्म, वो बच्चों की बातें हैं। वैसे भी कोई रॉयल व्यक्ति होता है ना, तो काम तो करता ही नहीं है। रॉयल व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहते हैं। व्यर्थ मुक्त हम हुए, मेरे को ऐसे लगता है। इतने समय से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब हमारे अंदर ना व्यर्थ ना नकारात्मक होता है, मेरी ऐसी मान्यता है। लेकिन हमारे अंदर साधारणता अभी भी है। जो साधारणता है वो रॉयल्टी तो नहीं है ना। एक बार दो भाई बातें कर रहे थे, गुलजार दादी साखी होकर बैठी थी और सुन रही थी। वो लोग एक के बाद दूसरी, कॉटेज की बात है, एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी, तीसरी चौथी, एक टॉपिक खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब वो सब देख रही, सुन नहीं रही थी, अपने में मस्त थी, लेकिन देख रही थी अब इनका ये हुआ, ये हुआ। एक बहन आई, दादी आप इन बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। दादी का उत्तर क्या था, मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहती, मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना, साधारण बातें कर रहे हैं। इन चीजों का टेस्ट हमको गुलजार दादी सिखाते थे। पांडवन में रहते थे ना दिल्ली में, तो दादी सिखाते थे कि इन चीजों का अगर टेस्ट पड़ जाता है ना, वो फिर छूटता नहीं है। ये बुद्धि का टेस्ट होता है, वो भी छूटता नहीं। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, पीछे अभी आ रही है, आ गई। तो टेस्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारी मर्यादा है। ये मर्यादा है। बाकी इसके अतिरिक्त ये काफी गुह्य गहरी बातें आपके सामने आई हैं बाबा की बताई हुई, और कुछ एक बातें और भी मैंने लिखी थी जिसको मैं केवल पढ़ दूंगी है, क्योंकि उसकी कोई भी बात अगर मन को खाती है, बाबा ने कहा हुआ है अगर मन खाता है तो खाता बनता है, समझ लिया? कोई भी बात आपके मन को खाती है तो वो माना समझ लो ठीक नहीं है, मन नहीं खाना चाहिए, दिल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कोई बात बोझ लगती हो, कोई भी बात अगर आपको बोझ लगती हो तो भी चेक कर लो, क्योंकि हर चीज लाइट, अगर कहीं बोझ महसूस होता है, इसको बोझ महसूस नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है, तो कहीं अपन में गड़बड़ है, वो चेक कर लो। फिर कभी कभी हम बातों में मिलावट कर देते हैं, मिलावट वाली बातें तो प्रसिद्ध हैं। किसी ने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है, बोला दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, उस बेचारे ने बोला, वो यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, अंत में हुआ दिल्ली में कुत्ता बीमार है। कुतुब मीनार की जगह क्या बन गया? कुत्ता बीमार है, इतना इंपॉर्टेंट कुत्ता हो गया। तो मिलावट सावधान, हर एक जिसको आप बात बोलोगे ना वो कुछ ना कुछ अपना जरूर मिक्स करेगा, उससे सावधान रहना है। खालिस शुद्ध बात को डाइल्यूट करना, बात को हम डाइल्यूट कर देते हैं, कैसे? ठीक है बहन जी भाषण करके गई है, क्लास करा के गई है, पहले अपन को तो देख लें, हम कर लें, या बात को उड़ा देना, अरे बाबा 84 सालों से कहता रहा है कहाँ बने, पहले बड़े बड़े तो हो जाए। हमें बात को डाइल्यूट कर दिया, ये भी उल्लंघन है ना। एक्स्ट्रा रहम करना, आपको याद होगा बाबा की मुरली आई थी, अगर आप किसी की कमजोरी देखते हैं जो यज्ञ के हित में नहीं है, और अगर आप उसको बड़ों को नहीं बताते हैं तो उसका बोझ चढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा रहम भी नहीं करना, बाबा को बताना चाहिए। हम लोग अपनी चाम से डरते हैं, लेकिन बाबा ने जो बताया है, आप अगर उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, मान लीजिए मेरे साथ जो बहन सोती है वो रात को वीडियो गेम खेलती है या वो फिल्म देखती है, और मैं कहती हूँ मुझे क्या रखा, ये जाने इसका काम जाने, लेकिन यज्ञ के वातावरण को तो खराब कर रही है, सूचना देनी चाहिए। ऐसे बातों को छिपाना या कोई भी बात को छिपाना, अनुशासन तोड़ना, कईयों को इसमें आनंद आता है, अनुशासन तोड़ने में उनको आनंद आता है, भी खतरनाक बात है। पार्टीबाजी, गुटबाजी, एक ही ग्रुप वाले, एक ही शहर वाले, एक ही स्टेट वाले, बाबा ने बेहद कहा गया, देहाभिमानी कहा गया, संगठन को तोड़ना। बाबा कहा करते थे किले को सेंध लगाते हैं ना, और एक ईंट टूटती है तो सारा किला डूब जाता है। फिर बाबा या यज्ञ के नाम का दुरुपयोग करना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला करके स्वहित के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ करना, बड़ों का डिसरिगार्ड और कभी कभी स्वप्रति या अपनी सेवा केंद्र के प्रति जहां से हम आए, क्योंकि यज्ञ में रहते हैं, बड़े स्थान पर रहते हैं, यहां तो दुनिया भर के लोग आते हैं। एक हमारे साथ दिल्ली में घटना घटी, रहता दिल्ली में, सहयोग सारे सेंटर का ले रहा है, भाई बहनों का, कहां जाकर के छत्तीसगढ़ में बना रहा है। अरे छत्तीसगढ़ से तुम्हारा क्या मतलब, कोई भी बात, ये भी हमारी मर्यादा का। हम इस तरीके से ये कार्य नहीं कर सकते, इसकी डिटेल्स है। इसी रीति पर्सनल लेन देन करना, चाहे वो धन की है, चाहे सुविधा की है, चाहे किसी भी प्रकार की है, वो सब मर्यादाओं के उल्लंघन में आ जाते हैं। बाकी तो आप सब समझदार हैं, बाबा के घर में, बाबा के घर की शान है, सारे यज्ञ की शान है। मुझ आत्मा से किसी को भी रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। ये बाबा ने मुझ आत्मा को पर्सनली, जो मेरी आखिरी मुलाकात बाबा के साथ साकार रूप में हुई, बाबा ने ये कहा था, बच्ची सदा ध्यान रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे, इतना काम है, ठीक है। ओके, आप सबके बीच में आके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है, और थैंक यू जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, बाबा के बच्चों से, इतने तपस्वी बच्चों से मुलाकात हो सकी। थैंक यू। ओम शांति।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही कहना है, करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार, बेहद में रहना नाहद में ठहरना सदा नदिया सबे रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है,
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
बाबा तुम्हारा यही कहना है।